वाइजा बुशीरा अहदुहुम बिल उनसा, जब खुद को खुशखबरी दी जाती, देखिए यहाँ पे बेटी की खुशखबरी कहा गया, अल्लाह ताला ने इसको खुशखबरी कहा है। हमारे लिए क्या होती है, हमारे माशरे में किसी की बेटी हो जाए तो कहते हैं हाय बेटी के ऊपर मिठाई बांट रहा है, मतलब लोग हैरान होते हैं। बेटे के ऊपर तो लड्डू बांटते हुए देखा है लोगों को, लेकिन अगर कोई बेटी के ऊपर किसी का हो जाए ना तो लोग हैरान होते हैं, बेटी के ऊपर मिठाई बांट, और कोई मुबारकबाद देने की गलती ना करे उनको, अगर उनकी बेटी हो गई, बेटा हो तो मुबारक दे दे। वो जो जो हॉस्पिटल वाली भी नर्स और जो दाइयां और जो ये सब होती हैं सफाई वालियां, वो भी बेटा हो तो फिर उसकी मुबारकबाद भी देती हैं, फिर कहती हैं मम्मी बेटा हुआ है आपका तो मम्मी कुछ दे, उनको पता है बेटी हुई है तो फिर तो चुप ही रहो, मैंने फिर तो बुरी चीज हो गई इसका क्या। अल्लाह ताला जिसको खुशखबरी फरमा रहा है, खुशखबरी पे तो खुश होना चाहिए, खुशखबरी पे तो मिठाई बांटनी चाहिए, खुशखबरी के ऊपर तो इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन हमारे हाल उलट है, हमारे लिए ये बदखबरी है। पहले तो ये बात सुन ले, तो ये अल्लाह ताला उसको बुशरा फरमाते हैं, तो इजा बुशीरा अहदुहुम बिल उनसा, इनमें से एक को खुशखबरी दी जाती लड़की की, तो इसका हाल क्या होता है। अब वो इसको खुशखबरी थोड़ी समझते, जल्ला वजहू मुसवदा, तो उसका चेहरा ही काला हो जाता है। चेहरा कब काला हो जाता है, जब इंसान गम में होता है, वह वो कदीम और वो गम के घूंट भरता है, हाय फिर बेटी हो गई, चलो एक आध तो फिर भी इंसान बर्दाश्त कर लेता है, एक दो हो गई, हाय जब तीसरी हो गई तो लोगों को रोते देखा है बाकायदा कि हाय फिर बेटी। अजीम होता है कि अंदर का सांस अंदर तो बाहर का बाहर, इंसान अंदर घुट घूट नहीं अपने घूंट पी ले गम का, वो वाली हालत, इतना उसका गम के मारे हाल हो जाता है कि आवाज भी नहीं निकलती, बस अंदर ही अंदर रह जाता है उसका गम। अल्लाह माफ करे, जिहालत सिर्फ उस वक्त नहीं थी, ये तो मुशरिकीन मक्का की हालत थी, आज भी वैसी जिहालत है। रोती हुई औरत हॉस्पिटल से घर आती है और वो घर वाले भी ऐसे अफसुरदा हो जाते हैं जैसे इनका घर में कोई खुशी नहीं आई, कोई गम का घर है ये, और वो सास ससुर और वो सारे ही गम के अंदर चले जाते हैं, हाय अब। और वो बहू जो है जो बेटी लेकर आई है वो भी एक नहुसत करार दे दी जाती है, क्योंकि ये बेटियां ही पैदा कर रही है। तो कहां जमाना है, जाहिलियत खत्म हुआ, आप कहते हैं खत्म हो गया, हम 21वीं सदी में दाखिल हो गए, ये तो हम अभी तक जमाना जाहिलियत में ही रह रहे हैं। फिर कहते नहीं क्या करें, इनके नसीबों से डर लगता है, मतलब नसीब तो अल्लाह ने बनाया, नसीब तो लड़के का भी बुरा हो सकता है, लड़के की आपको गारंटी है इसका अच्छा ही होगा। या तवारा मिन अल-कौमी मिन सुइन मा बुशिरा बिही, अब देखिए दोबारा खुशखबरी इसको कहा गया, तो दो दफा यहाँ पे खुशखबरी का ही लफ्ज आया कि छुपता फिरता है अपनी कौम से बुराई की वजह से, कि बुराई से कि एक बुरी चीज आ गई है, जो जो खुशखबरी दिया गया उसके साथ वो छुपता फिरता है कि ये क्या एक बुरी यानी बुरी चीज मुझे मिल गई। लोग कहेंगे देखो फलां की बेटी हुई है, अल्लाह ताला के हाँ इसका मतलब है कि ये बुरी चीज नहीं है, जब ही तो उसको खुशखबरी कहा गया, अगर बुरी चीज होती तो क्यों खुशखबरी कहा जाता। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी बेटी नहीं उसका कोई हमदर्द नहीं, इतनी बेटी को अहमियत दी गई, लेकिन उस दौर में और आज के भी दौर में बेटियों की जो अहमियत है वो नहीं है जो इस्लाम ने दी है। और ये अच्छे भले समझदार लोगों का भी यही हाल है, अयुम सिकुहु आला हुनिन, और वो सोचता क्या है कि क्या इसको लेके बैठा रहूं, इसको पकड़ के लिए रखूं जिल्लत के साथ, अब इसमें तो जिल्लत ही है ना, अब इस ह्यूमिलेशन के साथ इसके साथ जिंदगी गुजारूं, अम या दुसू फिर तुराब, या इसको दबाई दूं मट्टी में, अलासा अमा यकुमून, खबरदार कितना बुरा है जो वो फैसला कर रहे हैं, इतने बुरे ये फैसले करते हैं जो ये ऐसे देखे आप बैठा सोच रहा है, सोच विचार में लगा हुआ है कि अब करूं तो इसका करूं क्या मैं। देखिए इंसान अपनी ही औलाद को किस तरह से वो मारने के लिए तैयार हो जाता है, उसको खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है, और ये हाल होता था उस वक्त के जब किसी औरत के बच्चा पैदा होने लगता था तो उसकी चारपाई के नीचे ही गड़ा खोद देते थे कि अगर लड़की हुई ना तो फौरन इसी के अंदर दबा दो, कोई जरूरत नहीं इसको जिंदा रखने की। मैं हैरान हूं जिस मजहब ने औरत को जिंदा रहने का हक दिया, यानी आपकी जिंदगी ही पॉसिबल नहीं थी। जिस मजहब ने आपको जिंदा रहने का हक दिया, सबसे बड़ा तो हक यही है ना, उसी को कहते हैं ये तो औरतों के खिलाफ है इस्लाम में चीजें, मर्दों की बातें की गई हैं। हाँ आधी गवाही हमारी करी गई, हाँ हमारी दियत पूरी हमारी नहीं है, आधी है। ये सोचो तुम्हें आधी गवाही का कह के तुम्हें तो इस कोर्ट कचहरियों के चक्करों से बचा लिया गया, वरना तो तुम कोर्ट कचहरियों में घूमती रहती सारा वक्त। और ये बातें करके ना दीन से मुतनफिर किया जाता है, दियत भी आधी है। इसलिए कि देखे जो दियत किसको मिलनी है, ये औरत की कीमत थोड़ा ही है, और जो कातिल है उसको तो कत्ल किया जाएगा। अगर दियत होगी तो औरत की आधी, मर्द की पूरी। मर्द की दियत किसको मिलती है? औरत को, उसको उनके वरसा को। तो क्या उसका फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? उसको तो फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि फाइनेंशियली उसको वो एक बहुत बड़े क्राइसिस में आ जाती है जब ये और नहीं होता। फिर इतनी इसको इज्जत दी गई, इतना बुलंद मुकाम दिया गया कि इसको घर बैठ के खिलाओ। इसको अगर बेटी है या माँ है या बीवी है, जिस रोल में भी है, उसको विरासत दिलाई। पहले बाप उसका कफील होगा, फिर शौहर, फिर बेटे की जिम्मेदारी है, और बाज जगह पे भाई की फिर जिम्मेदारी आ जाती, बेटा नहीं है तो। जिसकी जिम्मेदारी सबने उठा ली, इसको तो फूलों की तरह उठा लिया। हजरत उमर कहते थे ना कि ये मदीना आके हमारी औरतों को क्या हो गया कि ये हमारे सामने बोलने लगी है। तो उनकी बीवी ने कहा कि सब्र करें जरा, जाके अपनी बेटी का तो हाल देख लें, वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सारा सारा दिन रूठी रहती है। तो हजरत उमर गुस्से में भरे हुए गए बेटी के घर, पता किया तो वाकई ऐसी बात होती थी। तो हजरत हफ्सा फरमाती है कि हाँ ये तो हमारा आपस का मामला है, ये वो माशरा था। आप आज के साथ कंपेयर ना करें, ये वो माशरा था जिसमें औरत को जीने का हक भी नहीं था। और आज से 100-200 साल पहले की भी बातें उठा के देख लेंगे, वहां पे क्या हाल होते थे औरतों के साथ। अपनी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकती थी, अपना नाम नहीं रख सकती थी। ये जी यूरोप के अंदर ही औरतों की यह हाल थी, इसीलिए तो इतना दबाया, तो आप फिर बिल्कुल ही फट के बिल्कुल ही आजादी के ऊपर आ गई। ऐसी आजादी के फिर सबको तहस नहस कर दिए, सारी अखलाकियात और सब चीजें पीछे कर दी। इतना दबाया गया, इनकी कोई हैसियत नहीं थी औरत की। तो इस्लाम ने तो हथेली का छाला बनाया, इसको विरासत में हिस्से दिए हैं, इसको हकूक पूरे दिए हैं, इसको कहीं कमी नहीं है। आप एक सुभान अल्लाह कहें और आपके शोहर सुभान अल्लाह कहें, दोनों को एक बराबर रिवॉर्ड है। ये नहीं है कि आपका काम है औरत का आधा रिवॉर्ड है। अगर इसमें आधा किया जाता फिर भी आप कहते गवाही क्यों मेरी ये आधी करती? ये क्या बातें हैं, ये कोई अकल की बात है? ये समझ की बात है? बताएं, अगर नमाज का कहा जाता, रोजे का कहा जाता, आदमी रोजा रखेगा इसको इतना अजर है और औरत रखेगी इतना अजर है, आधा इसको दिया जाएगा फिर भी समझ आती थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ एक गवाही को लेके तो उसी को नशर किए जाना। हालांकि देखे कोर्ट कचहरियों के चक्कर आसान नहीं होते, फिर गवाहियों के पीछे लोग दुश्मन बन जाते हैं, उनके पीछे करते। मर्द तो ये चीज उठा देते, औरत कैसे अफोर्ड कर सकती थी? जिसके खिलाफ गवाही दे दो वो ही दुश्मन। बल्कि अल्लाह ताला ने इसको प्रोटेक्शन दी है, इसके ऊपर एक मर्द को रखा है ताकि वो इसकी जिम्मेदारी उठाए। अब हमने उलट कर दिया इस निजाम को तो क्या करें? लेकिन वरना औरत की माल उसका अपना है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर वो माल कमाती भी है, हजरत खदीजा तिजारत करती थी, तो उसका माल है, मर्द उसमें से नहीं ले सकता। हाँ मर्द का काम है उसके ऊपर खर्च करें, तो और क्या चाहिए? जहेज औरत को नहीं देना है, वो मर्द को देना है उसको मेहर, तो वो उसको लेकर आएगा। अब हम उलट कर ले और हिंदुओं के उस पर चलने लगे तो अब हमारी अपनी गलती है। फिर ये इस्लाम का इसमें क्या कसूर? बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई बेटियों के जरिए आजमाया गया, यानी उसकी बेटियां हो गई और उसने उनसे हुस्ने सलूक किया, तो वो बेटियां उसके लिए जहन्नुम से आड़ बन जाएंगी। और फरमाया जिसकी दो बेटियां हैं, यहां तक कि वो उनकी अच्छी खबरगिरी करता है, परवरिश करता है, तो फरमाया कि कयामत के दिन वो और मैं ऐसे होंगे अपनी दोनों उंगलियां मिला के बताएं। और ये वो माशरा था जहां पे जीने का हक नहीं था। उस माशरे की बात हो रही है, दारमी में वो रिवायत आती है कि एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने आके कहा कि मेरी एक बेटी थी जिसको मैं बुलाता था तो मेरे पास दौड़ी आती थी, एक दिन मेरे बुलाने पे खुशी खुशी दौड़ी आई। मैं आगे बढ़ा, वो मेरे पीछे चलती गई। मैं फिर और आगे बढ़ता गया, वो मेरे पीछे आती गई। और दूसरी रिवायत में आता है कि मैंने अपनी बीवी को कहा कि इसको जरा खूबसूरत सा तैयार कर दो, तो फिर मैं उसको लेके इस तरह से गया और वो दूर दराज ले गया जहां पे गहरा कुआं था। तो वो मेरे पीछे पीछे आती जा रही थी, जब वो कुएं के करीब पहुंची तो मैंने उसका हाथ पकड़ के कुएं में उसको धकेल दिया। वो अब्बा अब्बा कहती रही और यही उसकी आखिरी पुकार थी। अल्लाह अकबर। और उस आदमी ने कहा, मुझे उसकी जब भी ये बात याद आती है मुझे किसी चीज में सुकून नहीं मिलता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ये बात सुन के रोने लगे। एक सहाबी ने मलामत की कि तुमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गमगीन कर दिया। आपने फरमाया इसको छोड़ दो, जो मुसीबत इस पे पड़ी है ये उसका इलाज पूछने आया। फिर फरमाया कि फिर बताओ। फिर से उस शख्स ने वो बात सुनाई या आप फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोने लगे कि आपकी दाढ़ी मुबारक सारी आंसुओं से भीग गई। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ, जमाना जाहिलियत के जो भी गुनाह होते हैं इस्लाम उनको खत्म कर देता है, तो तुम अब जाके नेकियां करो। इसी तरह बनू तमीम के अंदर ये बहुत रिवाज था कि वो तो इतनी बच्चियां जहां पैदा होती थी उनको मार देते थे। तो उनका सरदार था कैस बिन आसिम, उसने आके बताया कि मैंने 8 बेटियों को जिंदा दफन किया। तो आपसे सर ने फरमाया हर बेटी के बदले एक गुलाम आजाद को। उन्होंने कहा मेरे पास गुलाम तो नहीं है, ऊंट है। तो आपने फरमाया हर बेटी के बदले एक ऊंट को जिबा करो। बास ठीक है, उनमें ऐसे भी थे कि जो लोगों की बेटियां लेकर फिर उनको जो है ना जाके पालते थे और फिर उनको बड़ा करते थे, फिर उनकी परवरिश करते थे। ऐसे खुदा तरस भी थे, लेकिन सारे ऐसे नहीं थे। ज्यादातर ऐसे थे जो गड़े खोद के फेंक देते थे अंदर, जिंदा ही मट्टी में डाल देते थे, ताकि वो मर जाती थी चीखे मारती मारती। जाहिर है ये इतनी तो बच्ची होगी कि भागती भी आ रही थी। बाज पहाड़ की चोटी से ले जाके फेंक देते थे, बाज ड्राउन कर देते थे, गर्क कर देते थे पानी। तो इनके ये इकदाम बाज दफा इसलिए होते थे गैरत के नाम पे कि बेटी है मेरी, बेटी कल को किसी की बीवी बनेगी तो मैं उसके सामने नीचा हो जाऊंगा। बाज दफा फकरो फाके के खौफ से कि इसने मेरा उसे को तो खाना ही है, ये तो मुझे कोई हेल्प थोड़ी कर सकती, बेटा तो बाजू बनेगा। इतनी वो नफरत करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी इसकी अहमियत बताई और इसके लिए कितना बड़ा इंसेंटिव दिया। फरमाया तुम पर माओ की नाफरमानी हराम अल्लाह ताला ने कर दी और बेटियों को कत्ल करना हराम कर दिया। जहां वालदैन भी कातिल हो जाएं, वहां रब है जो रहमान और रहीम है और उसी का भेजा हुआ यह दीन है। फिर ये औरतें कैसे ये बात करती हैं कि इस दीन के अंदर हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे ऊपर ज्यादती की गई है। जिस रब ने तुम्हें जीने का हक दिया तो तुम्हें जीने भी नहीं देते थे, तुम उसी दीन के खिलाफ खड़ी हो गई। तभी तो मेरे हजरत हमजा की जो यतीम बच्ची जब शहीद हो गए थे, यतीम बच्ची थी उमामा, जब आपसे सलाम उम्रा कजा के लिए गए तो फिर वो चचा चचा कहती दौड़ी आई, तो हर आगे आ रहा है कि मुझे दे दें ये बच्ची। हजरत अली फरमा रहे मुझे दे, हजरत जाफर फरमा रहे मुझे दे, हजरत जैद फरमाते हैं मुझे दे दें ये बच्ची। क्यों इतनी डिमांड हो गई बच्चियों की? हम तो पहले जिंदा दरगोर करते थे। तो और देखें आप हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के पास एक मिस्कीन औरत आई अपनी 2 बेटियों को उठाए, तो उन्होंने उनको 3 खजूरें दे दी। उसने एक बेटी को दे दी, एक दूसरी को दे दी। अब बच्चियों ने जल्दी जल्दी खजूर अपनी खा के तो वो माँ की खजूर की तरफ देखने शुरू की। माँ ने अभी खाई नहीं थी, उसने उस जो अपनी खजूर थी उसके भी 2 टुकड़े करके आधी इसको दे दी आधी इसको। आयशा रजी अल्लाह तआला बड़ा हैरान हुई, जब आपसे सलम से जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तआला ने इस औरत के लिए जन्नत को वाजिब कर दिया इस बात की वजह से। ये मुस्लिम की हदीस है। तो देखिए ना आपके हजरत आयशा तो हैरान हुई, उनकी तो औलाद नहीं थी, उनको नहीं पता कि ये किस तरह का जज्बा एक औरत ने देखे कैसे अपनी बच्चियों के लिए किया। तो इसी तरह ये फरमाया जिस जिस शख्स की 3 बेटियां वो उन पर सबर करे, उनको खिलाए पिलाए, उनकी अब उनके ऊपर अपनी कमाई से उनको पहनाए, तो वो लड़कियां उसके लिए दोजख की आग से हिजाब बन जाएंगी। तो और क्या एक इंसान को इससे ज्यादा बड़ी क्या बात हो सकती। इतनी फजीलतें बेटों के ऊपर नहीं, बेटियों के ऊपर फरमाई, क्योंकि ये बेटियों को इस तरह से करते थे। और आज सबसे ज्यादा औरतों को ही मुश्किल है इस दीन के साथ, और औरतें ही इसके खिलाफ बोलती हैं, सबसे ज्यादा खड़ी हैं। इनको समझ ही नहीं है ना कि क्या इनके साथ सलूक होते थे, एक औरत के साथ, एक बेटी के साथ क्या सलूक होता था, और कैसे अल्लाह ताला ने किस तरह इस औरत का मकाम कहां से कहां पहुंचा दिया। लिल्लदीन ला युमिनून बिल आखिरती, उन लोगों के लिए जो ईमान नहीं रखते आखरत पर, ये ईमान नहीं रखते आखरत पर क्यों कहा गया, इसलिए कि ऐसे काम वो ही कर सकता है जिसको आखरत पर ईमान नहीं है। मसलो सऊ उनके लिए बुरी मिसाल है, उनके लिए बुरी मिसाल है इसलिए क्योंकि ये वो लोग हैं जो ऐसे काम करते हैं, यानी उन बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते हैं, या फिर ये भी मतलब है ये जो अल्लाह ताला के लिए बेटियां करार देते हैं। वलिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह ताला की तो मिसाल बहुत आला है, लैसा कमिसली ही शय, उस जैसा तो कोई है ही नहीं, और ये कहते हैं कि उसकी औलाद है, उसकी बेटियां। वहुवल अजीजुल हकीम, जबकि वो ताकतवर है, कुव्वत वाला है, हिकमत वाला है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वलो युआखिदुल्लाहुन्नासा बिजुल्मिहिम, अगर अल्लाह पकड़ने लगे ना लोगों को उनके जुल्म की वजह से, जुल्म कौन सा, ये शिर्क, ये बेटियों को जिंदा दरगोर कर देना, उनको कमतर समझना। आज भी माशरों में जहां पे अगर बेटी को जिंदा नहीं दरगोर किया जाता, पेट में ही मार दिया जाता है, जब पता चलता है कि ये बेटी है तो कहते हैं इसको यहीं पे खत्म कर दो। अब देख लें कि उस वक्त वो कत्ल है, इसलिए कि उसके अंदर जान आ चुकी है, उसकी जेंडर डिटरमिन हो चुकी है, तो फिर उस वक्त उसको कत्ल करना हुआ एक जिंदा को, जैसे एक जिंदा इंसान को कत्ल करते हैं वैसे ही है, ये कत्ल है, उस वक्त उसको अबॉर्ट करा देते हैं। इसी तरह ऐसा सलूक करते हैं बेटियों के साथ, बेटों को ज्यादा खाने को देना, बेटी को कम देना, इसने क्या करना है, तो पराई चीज है। बेटियों को जायदाद से हिस्से ना देना, क्योंकि इसका तो हिस्सा चला जाएगा किसी और के घर, हम बेटों को दें वो हमारे हैं। तो कैसे इंसान जो है ना, किस किस तरह यहाँ पे भी डंडी मार जाता है, ये जो मुसलमान है जो अपने ईमान कहता है मेरा ईमान है इस कुरान के ऊपर, वो देखें वो हरकतें करते हैं, जिंदा दरगोर ना भी किया तो ऐसे ही छोड़ दिया, अगर इसकी शादी कर देंगे और ये हमारी जायदाद ले जाएगी, इसके नाम तो इतनी जायदाद है, इसको घर पे ही रखो, इसकी कुरान से शादी कर दी, इसको ऐसे ही या पड़ा रहने दिया, कितने तरह के जुल्म हो रहे हैं। जबकि ये इस्लाम नहीं है, इस्लाम ने आपको हकूक दिए हैं। अब औरतों को असल में जहालत इतनी है, वो इल्म लेते नहीं है, पता ही नहीं है कि इस्लाम ने हमें क्या हकूक दिए, बस सिर्फ बोलते ही जाना, क्योंकि आदमियों ने ये सिखा दी, इस्लाम ने तो तुझे देखो पर्दे में रख के तो तेरे ऊपर कितना जुल्म कर दिया ना, अब वो इसी के ऊपर रोए जा रही है, हमें तो हक नहीं मिला, हमें तो इस्लाम ने कुछ नहीं दिया, हमें तो इस्लाम ने हमारे अंदर ज्यादती हो गई। तो इल्म लोगे तो तुम्हें पता चलेगा, फिर इल्म की अहमियत की बात आ गई। तो अगर अल्लाह ताला पकड़ने लगे ना लोगों को उनके जुल्म के ऊपर, जुल्म मैंने आपको पिछली बार 3 तरह के जुल्म बताए थे, कि एक अल्लाह ताला के साथ जुल्म के उसमें करना, उसकी उसके साथ शिर्क करके ये भी जुल्म है, एक इंसानों के साथ जुल्म करना कि जब उनके ऊपर जैसे अभी ये बेटियों को जिंदा दरगोर कर देना जुल्म है, एक इंसान अपने आप पे जुल्म करता है जब बहुत गुनाह करता है, तो जब किसी तरह का भी जुल्म है, अगर अल्लाह ताला लोगों को उनकी इन बातों पे पकड़ने लगे, मा तरका अलैहा मिन दाब्बतिन, तो कोई जानदार चलने वाला ना छोड़े जमीन के ऊपर, कोई जिंदा ना बचे यहाँ पे, सब खत्म हो जाए। अब देखे ना इंसान जुल्म करता है जिस वक्त वो बेटियों का हक नहीं दे रहा, जब उनको कमतर समझता है, हकीर समझता है, या इंसान गलत नजर उठा रहा है, वो भी जुल्म है, गलत बोल रहा है, हराम बात बोल रहा है, बेहयाई की बातें बोल रहा है, वो भी जुल्म है, कितनी तरह के जुल्म इंसान करता है, जितने अल्लाह की नाफरमानी के काम है वो सब जुल्म है। अगर अल्लाह ताला अपनी नाफरमानियों पे गिरफ्त करने लगे ना, फौरी उस वक्त पकड़ ले, तो कोई भी नहीं बचेगा, लाकिन युअख्खिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा, लेकिन वो मुअख्खर करता है, वो मोहलत देता है एक मुकर्रर मुद्दत तक। फइजा जाअ अजलुहुम ला यस्तअख़िरूना साअतन वला यस्तक़दिमून। ऐसे ना समझना कि कभी पकड़ेगा ही नहीं, हमेशा इसी तरह छूट ही मिली रहनी है। आज अगर जो जुल्म कर रहे हैं कोई कुछ कोई पूछने वाला नहीं है, नहीं अल्लाह के हाँ देर है, ढेर नहीं है। अगर आज नहीं किसी ने पकड़ा तो ये ना समझना तुम्हें खुली छुट्टी मिल गई है। जिस दिन उसने पकड़ा ना, तो फिर कोई एक घड़ी की भी ताखीर नहीं होगी, ना एक घड़ी आगे बढ़े, ना अर्ली आएगा ना लेट आएगा। जब वो पकड़ने लगता है तो उसका एक टाइम है, वो मोहलत देता है, और ये उसकी उसकी मेहरबानी है कि वो मोहलत देता है, वरना नहीं किसी ने बचना था। तो इस उसकी मेहरबानी को उसकी कमजोरी ना समझो कि वो पकड़ नहीं सकता, या उसको पता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूं, या कौन पूछने वाला है यहां, नहीं। लेकिन वो चाहता है कि तुम पलट आओ, उसका उसकी शफकत है, उसकी मेहरबानी है। वरना देखिए, ये जो इंसान अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखियां करता है, उसी वक्त जुबान अगर गंग हो जाए, जुबान अगर शल हो जाए, तो क्या करे इंसान। आंख हराम देखे, आंखें अंधी हो जाए, कान बुरा सुने, गलत सुने, अल्लाह ताला ने जिन चीजों से मना किया धड़ल्ले से सुन रहे, बल्कि कहते नहीं ये हराम है ही नहीं है तो हलाल है, उसी वक्त कान बहरे हो जाए, क्या कर सकोगे तुम। अल्लाह तुम्हारी समात ले जाए, तुम्हारी बसारत ले जाए, अल्लाह ताला कुरान में कहता है फिर बताओ कौन लेकर आएगा वापस। लेकिन उसकी मेहरबानी ये है, उसका रहम कि वो रहीम है, वो सबर करता है, उसका हिल्म है, उसकी बर्दाश्त है कि वो इंसानों को बर्दाश्त करता है, हालांकि वो पकड़ सकता है फिर भी वो बर्दाश्त करता है। वो ये जालून अल्लाह मा यकरहून, और वो अल्लाह के लिए वो चीजें मुकर्रर करते हैं जो खुद अपने लिए नापसंद करते हैं। तो इसकी एक मिसाल तो पहले गुजर गई कि अपने लिए बेटियां पसंद नहीं करते, अल्लाह ताला के नाम मंसूब कर देंगे उसकी बेटियां। इस तरह आप बहुत सारी चीजों में देख ले कि वो चीजें जो हम अपने लिए नहीं पसंद करते ना, वो अल्लाह के लिए लगा देते। जैसे मैंने आपको अभी एक मिसाल दी है कि आपने किसी के साथ एहसान किया, कोई आपके नौकर को जाके शुक्रिया करे, तो आप कहेंगे मैं तो आइंदा इसके साथ बात नहीं करनी, आइंदा मेरी तौबा है जो मैं इसके साथ कोई नेकी करूं। ये कैसा नाशुक्र इंसान है, ये कैसा इंसान है कि जो, या कोई आपको थैंक यू ही ना बोले, बस खामोश हो गया, लेता जा रहा है, आप उसके ऊपर एहसान करते जाना, उसको मुड़ के ये कभी याद ही नहीं आया कि वो कभी आपको एक लफ्ज का भी थैंक यू बोल दे। अब आप कहते हैं ये तो कितना एहसान फरामोश है, ये तो नमक हराम है, ये तो ऐसा है ऐसा है। आप कहते हैं इसके साथ मैंने कभी नहीं नेकी करना। अपने लिए हम क्या चाहते हैं कि कोई हमारा शुक्रिया भी अदा करे, अपने लिए हम क्या चाहते हैं कोई बेस्ट चीज हमें दे, अपने लिए हम क्या चाहते हैं हमारे बच्चे हमारे इतने फर्माबरदार हों, जो हम कहें वो फौरन, हम कुन कहें तो फयकून हो जाए। अपने लिए हम क्या चाहते हैं कि हमारी गुण गाय हो, क्योंकि हमने इनके पर एहसान किया। लेकिन हम खुद अल्लाह ताला के साथ क्या करते हैं, वो जो हमें अपने लिए कभी पसंद नहीं है वो करते हैं। हमें अपने लिए पसंद नहीं हमारे बच्चे नाफरमान हो, हम अल्लाह की कितनी नाफरमानियां करते, हम अपने लिए पसंद नहीं करते कि हम जिसके ऊपर एहसान करें वो हमारी नाशुकरी करे, हम अल्लाह ताला के एहसान सारे लेके उसकी नाशुकरी करते। कितनी मिसालें मैं आपको दूं कि हम अपने लिए जो चीजें नहीं पसंद करते वो ये अल्लाह ताला के लिए करते हैं। हमारा बच्चा अगर आगे से हमें एक दफा जवाब दे दे तो हम उसके लिए क्या हालत करते, हम उसकी क्या कैसी डांट पिलाते, कैसे उसके साथ हम उसको झिड़कते और कैसे उसके साथ एक लगा देते। दो तीन दफा कहे नहीं मानता ना, तो फिर हम उठ के फिजिकल फिर शुरू हो जाते। लेकिन अल्लाह ताला के साथ वो ही काम करते, नहीं सुनना नहीं सुनना नहीं सुनना, और नियमते लिए जाना लिए जाना लिए जाना। तसीफ अलसीना तुम, हालांकि मैंने आपको कहा इंसानों का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता अल्लाह के साथ। हमने क्या किसी के ऊपर भी हम ऐसा एहसान नहीं कर सकते जैसे अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर किया। वह तसीफ अलसीना तो हमल क्या दीबा, और उनकी जुबानें झूठ बयान करती हैं, कैसे अन्ना लहुमुल हुस्ना, कि जब वो कहते हैं कि हमारे लिए तो भलाई है, हमारे लिए तो सारा हमें अच्छा यहाँ पे भी मिला है वहां पे भी हमें अच्छा ही मिलेगा, और अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, सब ठीक है, कुछ हम क्यों जहन्नुम में जाएंगे, वो तो काफरों के लिए, मुतमईन जो बैठे हुए हैं बुराइयां करके भी, बड़े बड़े गुनाह के काम करके भी, सोचते हैं कि वहां पे भी हमें जन्नत मिल जानी है, ये इनकी जुबानें झूठ बोलती हैं, झूठ है ये। वहां पे भी हम अच्छे रहेंगे, आखिरत में भी हमारे लिए सब कुछ है। ला जरम अन्ना लहुमुन्नार, कोई शक नहीं इसमें कि इनके लिए आग है, इनकी जुबानें झूठ बोलती हैं कि हमें यहां मिला है तो वहां भी मिल जाएगा। हम गुनाह भी करेंगे, हमें कोई नेकी को कुछ समझते नहीं है, कोई इसकी अहमियत नहीं है, फिर भी जन्नत हमारे लिए। बस हम असल में इंसान जो गुनाह करता है ना, वो साथ एक जरा सी नेकी का काम छोटा सा करके समझता है बस इतना मैं जन्नत में तो मैंने चले ही जाना। अगर मैंने सारी रात गुनाह किया, सारी रात जुआ खेला, शराब पी, ये सब किया, और सुबह को उठ के, हाँ गरीब लोगों की मदद भी करनी चाहिए, उनको थोड़ा सा कुछ दे दिया, इधर कुछ चैरिटी दे दी, उधर कुछ मस्जिद में लगा लिया, तो थोड़ा सा कोई डोनेशन यहाँ वहां दे दिया, तो बस हम बहुत अच्छे हैं, हम कितने अच्छे, हम इतने नेकी के भी तो काम करते हैं। नहीं, समझते उनके लिए वहां पे जन्नत है? नहीं, लाजरमा अन्ना लहुमुन्नार व अन्ना मुफरातून, और वो आगे आगे लीड करेंगे, आगे आगे जाएंगे। तल्लाहि लकद अरसलना इला उमम मिन कबलिक, कसम अल्लाह की हमने रसूलों को भेजा कौमों की तरफ, आपसे पहले भी रसूल भेजे हैं, हर जमाने में रसूल आए हैं, लेकिन हर जमाने में क्या हुआ, फज़य्यन लहुम शैतान व आमालहुम, मैंने आपको जैसे कहा ना पहले, शैतान आमाल को, गुनाहों को इतना मुजय्यन करके दिखाता है ना, इतना खूबसूरत करके दिखाता है कि इंसान को गुनाह गुनाह ही नहीं लगता। कितने आज जो गुनाह के काम है, देखिए सरीहान गुनाह के काम है, क्लियरली कुरान और हदीस में आए हैं, उनके इतने खूबसूरत आज नाम दे दिए। ऐसे ही है जैसे कि आप जहर के ऊपर लेबल लगा ले, आबे हयात, जिंदगी का पानी, और वो है जहर, तो वो जिंदगी का पानी ही नहीं बन जाएगा, वो रहेगा जहर ही, लेकिन आपने उसको बड़ा खूबसूरत डेकोरेट किया, बड़ा खूबसूरत लेबल लगाया, उसके ऊपर वो लगाई, आपने उसको बड़ा प्रेजेंटेबल बना के किसी को पेश किया, और वो कहे हाय कितना खूबसूरत है। ये करता है शैतान गुनाहों के साथ, उनको इतनी प्यारी रैपिंग देता है, उनको इतना प्यारा डेकोरेट करता है, और इंसान को दिखाता है ये तो फन है, ये तो एंटरटेनमेंट है, ये तो कल्चर है, कभी सकाफत के नाम पे, कभी फैशन के नाम पे, कभी दुनियादारी के नाम पे, कभी ऐसी चीजें, ऐसी सी चीजें, ऐसी सी इन गुनाहों को ऐसा सजाता है ना, सजा के ऐसे दिखाता है ना कि वो गुनाह नहीं लगता, और वो लगता है कि इट्स ओके, कोई मसला नहीं है इसके अंदर, कोई बात नहीं है, सब कर रहे हैं ऐसे, तुम कुछ से ज्यादा गुनाहगार नहीं हो जाओगे। एक तरफ अल्लाह का दीन है जो रसूल लेकर आ रहे हैं, दूसरी तरफ शैतान अपनी चीजों के अंदर लगा हुआ है कि वो उनको खूबसूरत बना बना के दिखा रहा है, उनके आमाल, फहुआ वलियो हम लियो, तो आज के दिन भी वो उनका वली है, यानी कयामत के दिन भी वो उनका साथी होगा, फिर दुनिया में साथी बनाया तो वहां पे क्यों नहीं फिर। और आज के दिन से मतलब ये भी हो सकता है, जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बता रहे हैं कि आज के दिन भी वो उनका साथी है मुशरिकीन का, वलहुम आदाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। मुशरिकीन को तो दिखाए हुए थे रसूल की मुखालफत करना, उनको बड़ा मुजय्यन करके दिखा था, बड़ा अपने तरफ से अच्छा काम कर रहे थे, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल रहे हैं, शैतान ने कितना मुजय्यन कर दिया कि बड़ा नेकी का काम है जो तुम कर रहे हो। गुनाहों को वो मुजय्यन करता है, कभी आपको ये नहीं कहेगा ये गुनाह है, ये बड़ा बुरा काम है, तुम इसको कर लो, वो पागल थोड़ी है कि ऐसे कहे, उसको बड़ा खूबसूरत बनाता है। बेहयाई को देखिए आज कितना खूबसूरत बनाया हुआ है शैतान ने, बेशर्मी को, गंदी बातों को, झूठ को, बेईमानी को कितना मुजय्यन कर दिया, ये झूठ थोड़ी है, ये मजाक मजाक में हम तो कर रहे थे, लो इतनी सी बात को तुम ये समझ रहे हो, सदका करने लगते हैं तो कैसे दिखाता है पहले कि अच्छा इंसान प्लानिंग बड़ी करता है, प्लानिंग नेकियों की बहुत करता है, लेकिन उसके बाद शैतान उनको ऐसा उसको अंदर डालता है कि वो सारी नेकी भूल जाता है। आपने सोचा मैं तो, मुझे लगता है मैं तो $1,000 यहाँ पे दूंगी, फिर थोड़ी देर में सोचते नहीं मेरे ख्याल में 1,000 नहीं 500 दे देती हूँ, फिर थोड़ी देर में सोचते नहीं मेरे ख्याल इतने लोग और भी तो देने वाले हैं ना, मेरे ख्याल 200 में काम चल जाएगा, अब उसके बाद फिर आता है नहीं वैसे इनको इतनी भी नहीं जरूरत, मेरे ख्याल कहीं और दे दूंगी, छोड़ो 200 भी क्या देना, वो कहीं ऊंट का आपने प्रोग्राम बनाया कि वो सदके में देंगे, वो अंडे पे ले आता है, फिर अंडे तक भी को सदका नहीं करने देता, ये हाल है। तो वो मुजय्यन करता है, और मुजय्यन करने से फिर इंसान धोखा खा जाता है, और इंसान को लगता है कि ये तो बड़ा अच्छा काम है, इसमें क्या बुराई है, आप कपड़े पहनने लगते हैं, आप कुछ खाने लगते हैं, आप कहीं कमाई करने जाने लगते हैं। आप देख लेना, आप कोई भी चीज को देख ले, उसको वहां पे गुनाह को सजाता है वो, फिर आपको दिखाता है। वरना गुनाह बहुत गंदा है, बहुत कबी है, बहुत बदसूरत है। अगर वो उसकी बदसूरती के साथ आपके सामने लाए तो आप कभी ना करें, लेकिन जब वो मुजय्यन करके दिखाता है ना, तो फिर इंसान इसमें आ जाता है। कभी ख्वाहिशात को मुजय्यन कर देता है, कोई बात नहीं फिर क्या हो गया, और इंसान फिर इन्हीं बातों के पीछे देखे। बात है ना कि इनके लिए नार है, नार। देखिए इसी जिंदगी में इंसान ने कितना कितनी बुराई कर दी कि अपने लिए आग का सौदा कर दिया, बर्बाद कर दिया अपनी हमेशा की लाइफ को, दुनिया की छोटी छोटी हकीर सी ख्वाहिशात के पीछे, शैतान के पीछे चल के, इन गुनाहों को करके, जो बड़े बजाहिर खूबसूरत लग रहे। याद रखिए वो खूबसूरत ही लगेंगे। तो ये धोखा ना खाना कि अगर गुनाह होता तो फिर ये इतना बुरा ना होता, तो ये तो सब कर रहे हैं, ये तो इतना अच्छा लग रहा है, इसमें तो बड़ा फन है, ये तो बड़े मजे की चीज है, कितना मजा आ रहा है। गुनाह के उस वक्त करने में तो लज्जत होती ही है, अगर अल्लाह ताला उसके अंदर ऐसी चीज डाल दे ताकि लज्जत ना होती तो कोई गुनाह ही ना करता। यही तो इम्तिहान है कि इंसान को उस वक्त स्पर ऑफ द मोमेंट में इंसान को मजा आ रहा होता है, अच्छा लग रहा होता है, और फिर शैतान की थपकियां होती हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कर लिया तो कोई मसला नहीं है इतना बड़ा, जाके इंसान फिर तौबा भी ना करे। तो इसलिए इंसान शैतान की जब मानता चला जाता है, आप देख लेना सुबह को उठना है, सुबह को उठना में क्या बताता है, अजान हो रही है, कैसे मुजय्यन करता है, अरे नहीं रात को बहुत लेट सोए थे, इतनी लेट सोए थे, अब इतनी थकी हुई हूं मैं, हल्का जाई पढ़ लूंगी या थोड़ी देर में, अभी उठती हूँ अभी उठती हूँ अभी उठती हूँ, करते करते नमाज ही कजा हो गई। आपने मेकअप कराया, आपने $150 का मेकअप कहीं से करा लिया, अब उसके बाद आ गई बड़ा बहुत बड़ा फंक्शन है, अब आ गया नमाज का टाइम, अब वुजू नहीं है, अब चलो छोड़ो। अब कितनी औरतें बैठी होती हैं, आप ये देख लें कि उस वक्त शैतान क्या कहता है, कोई बात नहीं बाद में कजा करके पढ़ लूंगी। कितनी उठती हैं, और कितनी इस वजह से कि वुजू करना पड़ेगा, हमारा तो मेकअप खराब हो जाएगा, हम कैसे करें। अब देखिए उस वक्त शैतान क्या सुझाता है कि वो मेकअप ज्यादा जरूरी है ना, मेकअप को बचाना ज्यादा जरूरी, नमाज तो बाद में भी पढ़ सकते हैं, इतनी भी क्या बात हो गई, कजा नहीं पढ़ सकते, कजा पढ़ सकते, कभी कजा भी हो जाती है, तो हमेशा थोड़ी होता है कि ना ही टाइम पे ही पढ़े, इंसान टस से मस नहीं होता, फिर वही यही बैठा रहता है। कितनी हकीर ख्वाहिशात के पीछे हम अपने रब को नाराज करते हैं, शैतान की बातों में आ जाते हैं, हाँ ठीकरी जैसी चीजों के लिए अपने प्यारे रब को नाराज कर देना कितना घाटे का सौदा है। वामा अंजलना अलैकल किताबा, और नहीं नाजिल किया हमने किताब को आप पे, इल्ला मगर इसलिए कि लितुबय्यिन लहुम अल्लज़ी इख्तलफू फीह, फिर वही वाली बात आ गई जो पहले आई थी, हमने इसलिए किताब को आपके ऊपर नाजिल किया है, किसी पत्थर पर पहाड़ के ऊपर नहीं ना रख दिया उसको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पे नाजिल हुई है, इसलिए ताकि आप लोगों को वाजे करते जो इसमें इख्तलाफ करते हैं। इसका मतलब है जो इख्तलाफात का हल है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है, वहुदम व रहमत लिकौमी युमिनून, इसमें हिदायत भी है इसमें रहमत भी है उस कौम के लिए जो ईमान रखती है, ईमान लाने वालों के लिए इसमें हिदायत है। अगर आपका ईमान ही नहीं है इसके ऊपर तो क्या आपको हिदायत देगी, क्या आपको गाइड करेगी, एक गाइड है, रहनुमा है, राह दिखाती है और रहमत है। और अगर उठा के अलमारी के ऊपर रखा हुआ और बस उसको देखती रहती हूँ, कितना खूबसूरत गिलाफ है ना मेरे कुरान का, मैंने खुद सिया है इसका, गोटे लगा लगा के सिया, तो रहमत कैसे बनेगी जब तक जिंदगियों में नहीं आएगी, अलमारियों में सजा के रखा हो। तो अगर इसको रहमत बनाना है तो ये उसी के लिए बनेगी जिसका इसके ऊपर ईमान है, जो ईमान रखता है ना वो कैसे इसको छोड़ेगा, जिसको यकीन है कि इससे बढ़ के कोई चीज नहीं, इससे बढ़ के कोई इल्म नहीं, वो फिर इसको उठाएगा भी, इसको पढ़ेगा भी, इसको सीखेगा भी, इसको समझेगा भी, कहेगा ये तो राह मुझे राह दिखाती है, वो इसके ऊपर चलेगा भी तो ये रहमत बन जाएगी उसके लिए, दुनिया में भी रहमत बन जाती है, और हम सोचते हैं कि लोगों को बिठा के कुरान खानी करा लें, बस रहमत हो गई हमारे घर में, सारा साल उसके बाद बंद कर दो, जब रमजान आएगा तो उस वक्त पढ़ लेंगे, बस रहमत आ गई, अब सारे साल रहमत की जरूरत नहीं। रहमत तब बनेगी जब आपके अंदर ईमान है, ईमान है कि ये रास्ता दिखाती है, ईमान है कि ये रहमत है, तभी ये आपके लिए रहमत बनेगी। और ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आपका ये ईमान है और आप इसको छोड़ दें तो आप इसके साथ मैक्सिमम टाइम लगाएंगे। अब हम कहते तो हैं कि ये हिदायत है, रहमत है, लेकिन उसके बाद कितने मुसलमान हैं जो इसको पढ़ने के लिए आते हैं, कितने हैं जो इसको खोलते हैं हर रोज, कितने हैं जो इसको सीखने के लिए रजामंद होते हैं, रहमत कैसे बने फिर? अल्लाह ताला हमें इस किताब को सही सीखने समझने इसके ऊपर अमल करने वाला बना दे, और अल्लाह ताला इसको हमारा रहनुमा बना दे और हमारे घरों में रहमत का जरिया बना दे। अल्लाह ताला इसका हक अदा करने वाला हम सबको बना दे और हमारी औलादों को इसको हमारा गाइड बनाए। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.